हरि ओम हरि ओम हरि
जनो सज्जनो भूया,
सब मिलकर बोलो ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात्, सज्जन शांति माप्नुयात्,
सज्जन शांति माप्नुयात्,
शांतो मुचित बंधेभ्य,
शांतो मुचित बंधेभ्यो, मुक्तश्चान्यन् विमोचये,
मुक्तस्य अन्य विमोचये, हरिः ओम। नारायण 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 बोलो, नारायण 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 नारायण। पंडित नेहरू ने पुस्तक लिखी कि अकबर के जमाने में एक बड़े कवि, बड़े संत पुरुष, प्रसिद्ध पुरुष हो गए जिनका नाम था तुलसीदास जी महाराज। अकबर के जमाने में हो गए। आचार्य विनोबा भावे ने वो पुस्तक पढ़ी और तुरंत नेहरू को टोका कि आप ये क्या लिख दिया, अकबर के जमाने में संत तुलसीदास हुए, बिल्कुल गलत नजरिया है। हकीकत में संत तुलसीदास अभी भी करोड़ों हृदय में है और उस समय भी करोड़ों हृदय में थे। राज्य तो उन महापुरुष का था हृदयों पर, तो तुलसीदास के जमाने में अकबर हुआ ऐसा लिखना चाहिए था आपको। जयराम जी की। और अकबर के कुकर्मों से त्रस्त कुछ अब वो विषयांतर हो जाता है। उसको एक युवती कन्या ने बांप करवा दी। अकबर मेला लगवाता था, आखिरी दिन एक दिन ऐसा रहता था कि उस मेले में कोई पुरुष नहीं होगा, सारी नारियां राजपूतों की सुंदरियां बहू बेटियां खुला मेले में लुत्फ उठाएं। और वो क्या करता था, वो भी मेले का नाम था खुशरोज मेला। उसमें खुशरोज मेले में आखिरी दिन अकबर भी महिलाओं के कपड़े पहन के घुस जाता था और 10-20 उसकी अनुचारिणियां बदमाश वैश्याएं वैश्याएं साथ में रहती। जो सुंदर बहू बेटी उसके नजर में आती खुशरोज मेला में, वो संकेत कर देता और उनका ऐसा जाल की वो बहू बेटी अकबर के महल में पहुंचा दी जाती थी। पृथ्वीराज चौहान के भाई शक्ति सिंह चौहान की बेटी किरण भी उस मेले में गई और किरण को ईश्वर ने सौंदर्य दिया था लेकिन वीरता भी दी थी। तो योद्धा को जचे ऐसे वो तीर कमान चलाना, कराटा, ये वो, मतलब युद्ध विद्या में निपुण थी। कहते हैं ना घो को मरना होता है तो शिकारी के घर जाती है, ऐसे ही अकबर के पाप को मरना था तो उसको किरण जच गई थी वास्तव में, लेकिन वो किरण कितनी भारी पड़ेगी उसको पता नहीं था। किरण के तरफ इशारा कर दिया शक्ति सिंह चौहान की बेटी, पृथ्वी सिंह चौहान की भतीजी। किरण को जब रात में कावे दावे से पहुंचा दिया गया तो अकबर उसके आगे अपना असली रूप के मेले में मैं कपड़े पहन के आया था और मैंने खुशरोज मेला ऐसे तुम्हारी जैसी चिड़ियाओं को फंसाने के लिए किया है। ऐसे करके जो अपनी काम चेष्टा के लिए हाथ लंबा किया तो जैसे हाथी पर शेर झपटता है ऐसे झपट गई उस पर। और कामी आदमी बाहर से मोटा दिखता है, नस नाड़ियों में बल नहीं होता। संयमी आदमी बाहर से पतला भी दिखता है लेकिन मनोबल और नाड़ी बल होता है। ऐसे वैसे दांव पेच में पटक के कटार निकाली शत्राणी ने। ऐसे दाव से दबोचा कि बस कंठ पर कटा रखी, बोल आर पार कर दूं दुष्ट कहीं के। क्या खुशरोज मेला, बहु बेटियों का सौंदर्य पान करते करते फिर उनको फंसाने के लिए तूने रखा है, बोल क्या चाहिए? मृत्यु चाहिए कि जीवन दान? कांपने लगा, कांपने लगा और उसके कपड़े आगे से गीले हो गए, पीछे से रंगीन हो गए, बाकी का तुम समझ लेना। समझ गए होंगे, आगे से कपड़े गीले हो गए और पीछे से कपड़े रंगीन हो गए नीचे के, आप समझ गए डबल सिंगल हो गया और पसीने से तरबतर महल में अकेला कामलीला में, और किसी का तो प्रवेश नहीं था, एक शेरनी और एक कबूतर। बताओ कबूतर क्या करेगा शेरनी के आगे? कांपा, बोल ये खुशरोज मेला लगाएगा? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम खुशरोज मेला अब नहीं लगेगा। हे धरती की देवी शेरनी तू कौन है? मैं शक्ति सिंह की बेटी, पृथ्वी सिंह चौहान की भतीजी, मेरा नाम किरण है। कई किरणों का यौवन शोषण किया होगा, आज तेरी जिंदगी का अंत करती हूं। बोले मुझे गुस्ताखी माफ करो, मुझे प्राण दान दो, दोबारा ये मेला नहीं लगेगा और बहु बेटियों को इस तरीके से जंगल में नहीं फंसाऊंगा। वचन दे खुदा की साक्षी ने वचन दिया। जैसे शेर कूद के निकल जाता है ऐसे किरण निकल गई। ऐसे अकबर के जमाने में तुलसीदास हुए, ये लिखना पंडित जी का विनोबा भावे को नहीं जचा। और उस संत ने पंडित जी को चिट्ठी लिखी और विनोबा भावे संत ने कि अकबर के जमाने में तुलसीदास नहीं हुए, तुलसीदास के जमाने में अकबर हुआ और कई राजे आएंगे चले जाएंगे, जमाना तो सच्चे संतों का ही रहेगा। आपका क्या ख्याल है? इतिहास साक्षी है। शबरी मतंग ऋषि के चरणों में गई, उस समय कोई राजा राज करता होगा, बिल्कुल वो भूमि किसी राजा के शासन में होगी, मुझे उस राजा का नाम पता नहीं है। शबरी जिस समय गुरु के द्वार पर गई और मतंग ऋषि और शबरी का जहां सत्संग और मिलन हुआ, शबरी के वहां रामचंद्र जी गए, उस समय भी उस इलाके का कोई राजा रहा होगा। उन राजे महाराजाओं का नाम इतिहास में ढूंढो तो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन शबरी का नाम अभी भी आपके दिलों में दिमागों में है तो मानना पड़ेगा कि उस राजाओं का समय थोड़ा सा दबाव और दबदबे के कारण होता है, लेकिन राजाधिराज परमात्मा के भक्तों का समय अकाल होता है। नानक के जमाने में कितने कई राजा हो गए, उनको हम नहीं पहचानते, लेकिन नानक को जानते मानते पहचानते हैं। तो मानना पड़ेगा कि अकबर के राज्य में, अकबर के समय में राज्य ने, अकबर के समय में तुलसीदास हुए, ऐसा लिखना पंडित जी को उचित नहीं था और विनोबा भावे ने उनको कहा थे तुलसीदास के जमाने में अकबर हुआ। आपको ये जचता है नहीं जचता? तुलसीदास का जमाना था कि अकबर का जमाना था? अकबर का जमाना नहीं था, तुलसीदास का जमाना। तो वास्तव में तो जमाना भक्त और भगवान का ही रहता है, बाकी के लोग तो बीच में आते जाते ठुस हो जाते। क्या ख्याल है? राजा रामचंद्र का जमाना अभी चल रहा है, राम भक्त हनुमान का जमाना चल रहा है, लेकिन रावण का जमाना अभी चल रहा है ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता हूं। आप क्या ख्याल है? तो मानना पड़ेगा कि सत्य स्वरूप ईश्वर के तरफ जो चलता है अथवा ईश्वर के तरफ चले हुए संतों के संग में रहता है उसका जमाना लंबा समय रहता है, और असत्य संसार के तरफ जो चलता है उसका जमाना भले थोड़ी देर चमकता हुआ दिखे लेकिन आतशबाजी के अनार जैसा। आतशबाजी का अनार दूर तक चमकता हुआ दिखता है, नजीक जाओ तो अहंकार के अंगारे लगाए। असली अनार दूर तक चमक नहीं रखता, लेकिन नजदीक जाओ तो प्यास बुझाएगा और तुरंत पुष्टि रुष्टि पुष्टि सब दे देगा। तो असली जीवन है परमात्मा शांति, परमात्मा सुख, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा प्रसाद या बुद्धि। और नकली है ये बनाओ ये बनाओ, ये पाओ ये दिखाओ, उसको हराओ उसको हराओ और नंबर वन हो जाओ। अरे बुद्धू नंबर वन होगा तो जो नंबर थर्ड में गए या नंबर लास्ट में गए वो सब तेरे हरीफ बने रहेंगे। श्री रामचंद्र जी क्या करते थे, गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो खेलते समय जब सामने पक्ष हारने के कगार पे होता तो अपने साथियों को बोलते वो बेचारे हार जाएंगे, उदास हो जाएंगे, अपन जानबूझ के हारो उनको प्रसन्नता होगी। रामचंद्र जी सहित उनके साथी हार जाते थे और सामने वाले लोग जीत जाते थे, राम जी को संतोष होता था। ये राम का जमाना अभी भी चल रहा है। दूसरे को दबाकर हराकर शोषित करके बड़ा बनने वालों हिटलरों का जमाना नहीं टिकता, दूसरों को पोषित करके और आप प्रसन्न होने वालों का जमाना मिटता नहीं, ऐसा मेरा अनुभव है। आपका क्या ख्याल है? अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है चार दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कराना सीख ले। कई ऐसे लोग हैं, आप भी आ गए उसमें, 8 घंटे तो क्या 10-10 घंटे मेहनत करते हैं लेकिन रहने की कोठी ठीक ठाक नहीं, खाने का भी, बच्चों के पढ़ाने का भी, भविष्य उज्जवल नहीं। और कई ऐसे हैं कि हरामखोरी करके देश परदेश में पैसे जमाए, 1-1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, लाख लाख करोड़ जमाए। देखो मैं कोई आंदोलन वालों के साथ में नहीं, लेकिन बात जब जमाने की चली तो ऐसे लोगों का जमाना, चोरों का जमाना लंबा समय नहीं टिकता और साध का जमाना मिटता नहीं। एक घटित घटना, भ्रम निकाल देना कि सच्चे लोग दुखी हैं और हरामी लोग मौज करते, बिल्कुल गलत बात है। भगवान की सृष्टि में अन्याय चल रहा है, अन्याय होता तो सृष्टि अभी तक टिकती नहीं। काम देगा ये सत्संग, साथ साथ पीढ़ियों को आबाद करने वाला सत्संग होता है। सदना नाम का भक्त जगन्नाथ जी की यात्रा करने गया, रात्रि के समय किसी गांव में पड़ाव डालना होता, कोई भी उसको बुला कर ले जाए, चलो अतिथि हमारे यहाँ आप यात्री हैं, चौराहे पर बैठते हैं और जिसको श्रद्धा होती है अपने अपने घर ले जाते थे। सदना को एक सुंदरी अपने घर ले गई, खिलाया पिलाया, खटिया लगाया, शयन किया। रात्रि के 12 बजे ओ सदना, ओ सुंदर, मैंने तेरे को मन से पसंद कर लिया है, उठ अपनी भुजाओं में ले ले, मैं तेरी तू मेरा, बहन क्या बोलती है, मैं यात्रा करने जा रहा हूं, मुझसे ये पाप कर्म की बात ना कर, मुझे भय लगता है। क्या डरते हो, देख तू कितने 22-23 साल का है और मैं भी ऐसी युवती, तेरी मेरी जोड़ी कैसी, और वो आदमी मेरा पति तो देख बुड्ढा है, 32-34 का बुड्ढा, और तू 22-24 कर, मैं भी 22-24 की, अपनी जोड़ी दे, ये चांदनी रात क्यों देर करता है, मैं तेरी तू मेरा। बोले ये नहीं हो सकता है बहन, मुझे डर लगता है, तो मैं तेरा डर मिटाती हूँ। और थोड़ी देर में खून से सनी हुई तलवार लाकर दिखाए के देख यात्री, तेरा भय का कांटा मैंने हटा दिया है। क्या किया, मेरे पति की गर्दन काट के आ गई, मुझे वो पसंद नहीं है। उस जमाने में 1,00,000 रुपया भी बड़ा होता था, 1,00,000 मतलब आज का करोड़ समझ, इसको तो गाड़ देंगे अभी। उस जमाने में फर्श टाइल्स आदि नहीं था, लिपाई का जमाना था, इसको गाड़ देंगे, सुबह भक्त और भक्तानी जगन्नाथ की यात्रा करने जाएंगे। अरे बोले दुष्टा, अपने पति की गर्दन काट दी और मेरे साथ तू कुव्यवहार करना चाहती, मैं यात्रा करने को निकला और ये धंधे करूंगा, नहीं। बोले देख सदना, काम में विघ्न पड़ता है तो क्रोध का रूप लेता है। उर्वंशी ने भी अर्जुन को आमंत्रित किया था, अर्जुन नहीं माना तो उर्वंशी ने उसे श्राप दिया, मैं उससे भी खतरनाक साबित हो सकती हूं। मान ले, मुझे अपना ले। बोले कभी नहीं हो सकता है, दुष्टा कहेंगी। मैं दुष्टा हूं या तू दुष्ट है, अभी दिखा दो। बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाए। पड़ोस के लोग आए, मेरे पति की हत्या करने वाला, अब हत्या खुद करके आई थी, मेरे पति की हत्या करने वाला, और मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरी इज्जत लूट रहा है, मैं क्या करूं। बस नाटक चालू कर दिया। राजा के यहां जजमेंट मिला सुबह को, कि जो भगवान के नाम निकलते और किसी के यहां अतिथि होते हैं और उनकी हत्या करे और फिर उसकी पत्नी की इज्जत लूटे, ऐसे पापी गुनाहगार को हम जेल में रखेंगे तो हमारी भूमि अपवित्र होगी। बड़ा धर्मात्मा बनता है। अब समझ रहे हैं बात को। इसे इसके दोनों हाथ काट के जगन्नाथ जी के रास्ते पर धकेल दो, हमारे राज्य की सीमा से बाहर करके आएंगे हमारे पुलिस के अधिकारी, एसपी एसएसपी और डीआईजी की ड्यूटी। सर सर करके विधि हो गई। अब चलते चलते एक दिन दो दिन चार दिन जगन्नाथ जी की यात्रा करते करते वो भाई थक गए, कांटे पैर में चुभ गए, दोनों हाथ कटे हैं, जो कुछ बांधना बुनना था करवाया है रास्ते में, लेकिन पीड़ा सताई। शाम का समय था, आज रात यहीं पड़ा रहूंगा, प्रभु अब एक दिन का रास्ता है, मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन जगन्नाथ आपके दर्शन बिना नहीं जाऊंगा। कौन बोल रहा है? सदना बोल रहा है। अब अपना भक्त बिना दर्शन के जाए, कुछ भी हो जाए मैं मरूंगा लेकिन वापस तो नहीं जाऊंगा, तू चाहे तो मुझे डोली भेज सकता है। हे मेरे जगन्नाथ, मुझे तेरा दर्शन करना है। ऐसे करते करते प्रार्थना करते करते चुप हो गया। सच्चे हृदय की प्रार्थना करते करते आप चुप हो जाओगे तो अजगैबी मदद मिलती है। अजगैबी, सारी दुनिया रूठी हुई हो और दुनिया के बड़े बड़े तवंग रूठे हुए, और आप प्रार्थना करते करते शांत हो जाओ, नौ बार ऐसी सहायता मिलती कि तवंगर देखते रह जाए। बिल्कुल पक्की बात है, उसके कई प्रमाण है। ऐसे चमत्कार घटते हैं कि मैं आपको सुनाऊं तो आप दांतों तले उंगली डाल देंगे। राजनेता भी कर सकते, साधु बाबा नहीं, राजनेता भी चमत्कार कर सकते। राजगोपाल आचार्य 1956 में अकाल पड़ा था, देहातों के टैंकर लाला के देहातों के ट्यूबवेल फेल हो गए, रेड स्टोन लेक फेल हो गया। फिर प्रार्थना करते तो ऐसी बरसात के रातों रात ओवरफॉल रेड स्टोन लेक, और मद्रास की सड़कों पे नावें चलानी पड़ी। राजगोपालाचारी सीएम था, 1956 की घटना है, जाकर सरकारी रिकॉर्ड देखो। राजगोपालाचारी जब बच्चे थे उनके स्कूल में विवेकानंद आए थे और नम्रता से खाली प्रणाम कर दिया था। कितना चमका, संत का दर्शन और नम्रता का प्रणाम कितना फल देता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। सदना प्रार्थना करते सो गया। राजा रुद्र प्रताप उस समय उड़ीसा के राजा थे, उनको स्वप्न दिया भगवान ने, मेरा भक्त हाथ कटा है और जल्दी से कहारों को और डोली को भेजो, उनको स्टेट गेस्ट घोषित करके उनकी सेवा में लगो। मैं भी देश में जाता हूं, कई जगह पर मुझे राज्य का अतिथि घोषित करते जाए, कर्नाटक हो जाए, कश्मीर हो जाए, और जगह कई जगहों पर। और जहां राम जन्मभूमि का जिस दिन चुकादा आना था, उस दिन चार्टर प्लेन से मेरे दो प्रांतों में कार्यक्रम था, दोनों प्रांतों वालों ने 144वीं कलम छत पे रख दी, बापू का सत्संग होने दो। गोवा में भी था और बेलगांव में, एक ही दिन जिस दिन 144वीं कलम पूरे देश में थी, और दोनों प्रांतों की सरकारें अलग थी। मेरे प्रोग्राम में दोनों ने सेवा का मौका लिया और यशस्वी भी हुए। उनकी सरकार जाते जाते बची और इस सरकार का भी यश बना रहा। जो ईश्वर के रास्ते चलते हैं उनमें जो भी मदद करते हैं उनका पुण्य बढ़ता है और उनका यश टिकता है, बिल्कुल पक्की बात है। तो बात चली थी, पंडित नेहरू ने भारत की खोज नाम का पुस्तक लिखा और उसमें पुस्तक में लिखा कि अकबर के जमाने में संत तुलसीदास हो गए। तो विनोबा भावे ने उनको चिट्ठी लिखी कि अकबर के जमाने में तुलसीदास नहीं हुए, अपितु ये राजे महाराजे आते जाते रहते, इनका जमाना नहीं टिकता, भगवान और भगवान के प्यारे संतों का जमाना ही टिकता है, आपको पुस्तक में सुधार करना चाहिए। अकबर के जमाने में तुलसीदास नहीं हुए, तुलसीदास के जमाने में अकबर हुआ। जयराम जी की शबरी के जमाने में फलाना राजा हुआ, ये हो सकता है, लेकिन फलाना राजा के जमाने में शबरी हुई तो बताओ, मैं आपको इनाम दूंगा। कौन से राजा के राज्य में शबरी हुई आप नहीं बता सकते। जहां शबरी थी वहां भी किसी राजा का तो राज्य होगा, कौन से राजा के जमाने में शबरी हुई नहीं है। डोली आ गई और जगन्नाथ जी का दर्शन, वीवीआईपी बन गए, स्टेट गेस्ट। जब अंदर दर्शन करने गए, पुजारी के सिवाय कोई अलाव नहीं, यहां तक की व्यवस्था कर दी मेरी प्रार्थना से, तो जब मेरे हाथ कट रहे थे और कुल्टा ने अपने पति की हत्या करके मुझे हत्यारा साबित किया, दंड मिल रहा था, तब तुम कहां गए थे मेरे जगन्नाथ, तुम्हारी सृष्टि में इतना अन्याय कैसे। ऐसे करते करते आंखें भर गई, भाव विभोर हो गए। ध्यान से सुनना, फिर क्या हुआ, अगले जन्म की रील चल पड़ी। सदना क्या देखता है, एक दुबली पतली गाय है ऐसे वैसे घूमने वाली, कसाई की उस पर बुरी नजर पड़ी। गाय के हृदय में पता चला कि मेरे को मारेगा, गाय जान छुड़ा के भागी। मैं तपस्वी था, उस कसाई ने आवाज मारा, जरा पकड़ना तपस्वी गाय को, रोकना। मैंने दोनों हाथ से गाय के गले में जंजीर बना दी अपनी, वही गाय वहां सुंदरी बनी हुई थी और गाय को हलाल करने वाला कसाई उसका पति बना था, और मैं सदना हाथ से पकड़ के गाय की हत्या में निमित्त बना। मेरे हाथ कटे, उसका गला काट, गाय का गला काटने वाले का उसी गाय ने स्त्री के रूप में गला काटा। ये सारा रील जब देखा तो अहोभाव से भर गया सदना के, प्रभु आपकी सृष्टि में अन्याय है अथवा देर है? नहीं नहीं, हमारी समझ में अन्याय है देर है, मेरे जगन्नाथ 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 क्षमा करना, मैं आप पर आरोप कर रहा था लेकिन हमारी बुद्धि मारी हुई थी, सत्संग का अभाव था। जगन्नाथ जगन्नाथ, तो कटे हुए आज, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, दोनों पंजे उभर के आ गए। आज भी वो घटना, हजारों लोग इसके साक्षी रहे होंगे उस समय। तो जो आदमी सत्संग सुनता है, सुनाता है, सुनने सुनाने में भागीदार होता है, उसकी भाग्य की बाजी, बिगड़ी बाजी सुधरती है। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर जो चीज पाने को जाते थे, वो चीज आपको बैठे बैठे यहाँ घर बैठे मिल रही है। उज्जैन का सम्राट राजा भरतृ देखा के सोने के बर्तन में खा लिया। 365 बबरची थे, हर रोज साल में एक बार एक बबरची रसोई के ग्रुप को मौका मिलता था सम्राट के लिए व्यंजन बनाने का। ऐसा भरतृ राजपाट छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में गए। गोरखनाथ के चरणों में गए तो जैसे और साधु भभूत रमाए लंगोट पहने, ऐसा ही जीवन जीना पड़ा। लेकिन उस सम्राट ने संत का फायदा ऐसा तेजी से उठाया कि गोरखनाथ और अपने शिष्यों के आगे प्रशंसा करने लगे कि अभी अभी आया है वो भरतृ, क्या कमाल की उसकी तितिक्षा है, क्या कमाल की सूझबूझ है, कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जो पुराने थे ने सीनियर, वे जूनियर की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं करते। गुरुजी वो तो राज छोड़ के आए, इसलिए आप सराहना कर सकते हो, वरना तितिक्षा में क्या है उनके पास। बोले क्रोध के समय क्रोध क्रोधी नहीं होता, और आकर्षण और यश के समय यश का पुतला नहीं बनता, सामान्य आदमी वाहवाही में फूल जाता है और दुख में सुकड़ जाता है, ये तुच्छ व्यक्ति की पहचान है। बड़े आदमी की पहचान है कि वाहवाही में सम रहे और निंदा में भी सम रहे, ये बड़ा आदमी है। बोले गुरुजी परीक्षा हो तब पता चले। बोले करते हैं परीक्षा। निरंजन चेला था, भरतृ को आवाज करो, राजा भर्तरी नहीं बोलोगे, भर्तरी साधक जहां हो आ जाए, भर्तरी भागे भागे आए, भर्तरी भंडारा बनता है तुम्हें पता है। जाओ बबुल का जंगल है, लकड़ियां करके आओ। तुमको नहीं बोलूंगा मंत्री, संसद हूं नहीं बोलूंगा मैं, अभी जमाना भी नहीं, फॉरेस्ट वाले अलाउ भी नहीं करते। जो आज्ञा महाराज, जिसने कभी कुहाड़ी नहीं उठाई वो बबुल के जंगल में जाके लकड़ियां करके आएगा, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जो आज्ञा महाराज, चल पड़े। एक आध घंटा हुआ, चेलों को भेजा कि वो लकड़ियों का बोझा उठा के आता होगा, तब जहां एनी कट हो, एक तरफ पानी हो दूसरी तरफ खाई हो, वहां से पसार होना पड़ेगा। मुझे पता है जंगल का, तुम लोग ऐसे ऐसी जगह पर जाके उनको धक्का मारना। तो हरीफ थे वहां। जी गुरु जी, भरतरी को नीचा दिखाकर सीनियर जूनियर से आगे हैं ऐसा साबित करने के लिए उनको तो चाहता काम मिल गया। जी गुरु महाराज, आज्ञा पालन होगा बिल्कुल, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी, क्योंकि फरियाद करने वाले हरामखोर थे। भरतरी आ रहे, चुपके बैठे। जहां भरतरी एनीकट, जहां पानी का संचय होता है ना, उस पहाड़ को एनीकट बोल देते। उस पहाड़ पे भरतरी ने पैर रखा और बीचों बीच आया चेला, एक आगे से एक पीछे से, जगह थोड़ी टक्करियों मारी, धड़ाक से बोझा गिर गया। भरतरी संभल गए, मानो कोई घटना ही नहीं घटी। उन साधुओं को कुछ कहा नहीं भरतरी ने, ना आंख लाल की, बोझा उठाया और चल दिए। चलो ने कहा, इसमें तो उनको क्रोध नहीं आया, लेकिन इनमें कितनी सहन शक्ति है उसकी परीक्षा हो जाए गुरुजी, थोड़े दिन के बाद का। भरतरी हमारे यहां शिष्य में से मुख्य शिष्य और पट शिष्य की परंपरा में प्रवेश करना हो तो गुरु की आज्ञा के अनुसार नंगे पैर यात्रा करनी होती है। जाओ अभी जेठ का महीना है, आषाढ़ शुरू हो रहा है कल से, जेठ आषाढ़ गर्मी का मौसम है। मरुभूमि में पैदल पैदल एक महीना यात्रा करो, किसी वृक्ष का आश्रय नहीं लोगे, वृक्ष के छाया पर भी पैर नहीं आना चाहिए। अगर एक महीने की इस यात्रा में तुम सफल होते हो तो तुम्हें शिष्य का दर्जा मिल सकता है, नहीं तो फिर जाओ तुम अपने राजवैभव में भोगी बनकर नरकों में जाओ, तुम्हारी मर्जी, फकीर बनकर ईश्वर को पाओ, तुम्हारी मर्जी। नहीं महाराज जी, मेरे में कच्चाई है कि आपको इतना बोलना पड़ता है, आपकी आज्ञा के अनुसार अब मैं यात्रा को निकलता हूं। एक कंतान का कंठा दे दिया, जाओ यात्रा करने गए। कौन? संसद नहीं है, उज्जैन का सम्राट गोरखनाथ अलग अलग रास्तों से अपने चेलों को दिखा रहे हैं कि देखो ऊपर घाम, नीचे बालू, फफूंदे फूले होते हैं टूट जाते हैं, और ये जहां भूख लगती भिक्षा मांगते किसी छायादार वृक्ष की तरफ नहीं जाते। अब मैं योग शक्ति से एकाएक इसके आगे वृक्ष खड़ा करता हूं, फिर देखो कैसा आज्ञा का पालन होता है। गोरखनाथ ने अपनी धारणा शक्ति का उपयोग किया, और कौन सी धारणा से क्या सिद्धियां आती है मैं तुमको बताऊं तो तुम दंग रह जाओगे। मैंने वो यात्रा की हुई है थोड़ी बहुत, तुमको लगेगा कि हम नाहक यहां संसार में बच रहे हैं, जब इतने खजाने अपने अंतरात्मा में है, अलग अलग स्विच ऑन करने से इतना होता है। अभी मैं बता सकता हूं इस कथा के बाद, तो आप दंग रह जाओगे, आप में बहुत कुछ छुपा है। धारणा शक्ति का उपयोग किया और वहां वृक्ष खड़ा हो गया, वृक्ष की छाया भरतरी पे पड़ी, ऐसे कूदे मानो अंगारों पे पैर पड़ गया, हट गए। बोले देखो, उसको पता नहीं कि तुम और हम उसे देख रहे हैं, फिर भी गुरु की आज्ञा पालने में कितना सतर्क है। और इस आदमी के पास 365 बबरची रहते थे, वो आदमी नंगे पैर यात्रा करे अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की गुरु की आज्ञा में आ बैठे। 10-12-15 दिन बीते होंगे, 20 दिन बीते, सारे शिष्यों का अरमान उतर गया। भरतरी के आगे गोरखनाथ प्रत्यक्ष हुए, भरतरी तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास तितिक्षा देखकर हम प्रसन्न हैं, बोलो तो अष्ट सिद्धि दे दे, नौ निधियां दे दे, क्या चाहिए? बोले नहीं गुरु महाराज, आपकी प्रसन्नता। उन चेलों को भरतरी की महानता बताने के लिए गोरखनाथ ने थोड़ा कड़क शब्द में कहा, ये क्या है? गुरु प्रसन्न हो, शिष्य को कुछ देना चाहते हो और कुछ नहीं चाहिए, मतलब अभी भी अपनी शिख ही बगार रहे हो? नहीं गुरु महाराज, तो कुछ मांग लो। वो फटा हुआ कंतान था, सुई और धागा दिया, गुरुजी मांगता हूं तो ये कंतान थोड़ा सी दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। मांग लिया ना, ये कंतान आप जरा मेरा फट गया तो सी दो। कंतान तो क्या सी है महाराज, जीव ईश्वर की एकता करा के भगवान का साक्षात्कार करा दिया, ऐसे गोरखनाथ। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे। ऐसे ऐसे यहां राजा भरतरी हो गए, गोरखनाथ हो गए और ऐसे महापुरुष हो गए। अपने बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाओ, ऐसा नहीं कि वो चलचित्र सुना, वो लवर लवर ले भागा, लवरी लवर ले भागा, पुलिस पीछे पड़ी, ये हुआ वो हुआ। ये ऐसी फिल्मों से तो बिल्कुल विदेशी मंकी ब्रांड बच्चे बनते। भारत के संतों की और महापुरुषों के, भारत के इतिहास की गाथाएं बच्चे बच्चों में भरो, ताकि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम, मैंने तो वर्षों पहले कहा था, 2011 में भारत करवट लेगा, तो देखो करवट ले रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा। 8-10 साल पहले मैंने कहा था भारत विश्व गुरु बनेगा, हम विश्व गुरु के रास्ते पे करवट ले रहा है।